ये आकाशवाणी है, सामिकी में प्रस्तुत है खुदरा महंगाई में गिरावट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और पत्रकार संतोष तिवारी।
महंगाई की दर नवंबर के महीने में कम हुई है, और सिर्फ नवंबर के महीने में ये कम ही नहीं हुई है, ये मतलब 3% जो होती है उस दर को माना यह जाता है कि काफी कम है, उससे भी नीचे चली गई है। जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, कहा यह जाता है कि इस महंगाई की दर को 4% के 2% ऊपर या नीचे वो रख सकते हैं, ऐसा रखना चाहिए, ये आरबीआई का मैंडेट है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि लगातार तौर पर महंगाई की दर जो है वो नीचे रही है और नवंबर के महीने में 3% के नीचे चली गई है। भट्टाचार्य साहब, महंगाई की दर इस तरह से नीचे जा रही है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इंटरेस्ट रेट, वो कम नहीं हो रहा। जो नवंबर के महीने का महंगाई का दर का आंकड़ा आया है उसको लेकर आप इंटरेस्ट रेट को कैसे देखते हैं?
पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि महंगाई दर जो है, ये जो खुदरा महंगाई दर है, ये क्यों इस अवस्था में आ पहुंची है। आपने कहा 2.33% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है, पर अगर आप उसको तोड़ेंगे, इसको आप कॉम्पोजिशन देखेंगे इसका, आप ये देखेंगे कि उसी के अंदर रिटेल फूड इंडेक्स जो है उसमें हम डिफ्लेशन देख रहे हैं। इसका मतलब दाम गिर गए हैं। दाम की इन्फ्लेशन में होती है दाम बढ़ने की दर। हम ये देख रहे हैं कि जो फूड प्राइस इंडेक्स जो है उसमें करीबन 2% की दाम गिर रहे हैं, और डिफ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन नहीं हुआ है। इसी के कारण आप ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो आपका 2.33 में आ चुका है। अगर हम देखते हैं कि ये फूड इन्फ्लेशन का कारण क्या है, आप और भी अंदर देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन जो हुआ है इसका कारण है वेजिटेबल प्राइसेस। वेजिटेबल प्राइसेस में नवंबर में अगर आप नवंबर 17 से तुलना करेंगे तो 15% दाम घट गए हैं। आपकी और भी एग्रीकल्चरल आइटम्स जो हैं उसमें देखेंगे तो उसमें 9% दाम गिर गए हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड जो फूड आइटम्स में उसमें 3% दाम गिर गए हैं, तो सीरियल्स को छोड़कर सारे अदर जो एग्रीकल्चरल आइटम्स में वो दाम घट गए हैं। इसी का एक प्रधान कारण यही है कि जो फूड इंडेक्स जिसका वेट इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीबन 46% होता है, 46% का वेट से क्या हो रहा है कि जहां पे डिफ्लेशन हो गया है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन आपका सिर्फ 2.33 दिखा रहा है। अगर आप इसी इन्फ्लेशन इंडेक्स में फ्यूल की बात देखेंगे तो फ्यूल का वेट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ 7% है, और अगर आप दाम देखेंगे इसमें इन्फ्लेशन 7% हो गया है। क्लोदिंग आइटम्स में, हाउसिंग आइटम्स में दाम बढ़े हैं। हेडलाइन नंबर जो है वो 2.33 है, और ये 2.33% का जो इन्फ्लेशन जो है उसका प्रधान कारण ये है कि फूड इन्फ्लेशन के बजाय डिफ्लेशन हो गया, दाम घट रहे हैं। उसी के लिए हम देख रहे हैं कि ये बिनाइन इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। ये इन्फ्लेशन रेट मेरे हिसाब से और भी कम होगा, क्योंकि नवंबर की रेट में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम उतने घटे नहीं थे। जब आप दिसंबर का देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो फ्यूल एंड लाइट्स में जो 7% की बढ़ोतरी हुई थी वो भी कम हो जाएगी। मेन सवाल जो है कि इंटरेस्ट रेट का जो चैलेंज है वो मैं मानता हूं कि बहुत एक और भी चैलेंजिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की जो अब स्टैंड ही नहीं बदलनी चाहिए, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट में भी परिवर्तन होना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, जो दिसंबर 5 को आई, उसमें भी कई लोग जो है, काफी लोग, ज्यादातर मार्केट में लोग जो है वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि अगर ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम ना भी हो तो कम से कम स्टांस, जैसे कि आरबीआई ये बताता है कि हमारी दिशा क्या होगी, उसमें बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि आरबीआई या रिजर्व बैंक जो है उसका मुख्य काम जो है वो ये है कि इन्फ्लेशन की दर या महंगाई की जो दर है उसको 4% के 2% ऊपर या नीचे में रखे, और उसके लिए जो पॉलिसी तय करना है वो तय करे। लेकिन कहीं न कहीं पर जब आप पिछले 6 महीने या 8 महीने देखेंगे, 1 साल देखेंगे, तो जो प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन का हुआ या महंगाई की दर का हुआ, और जिसके बिना पर ये डिसीजन लिया गया कि ब्याज की दर जो है वो नहीं घटनी चाहिए, वो जो डिसीजन लिए गए उससे इन्फ्लेशन जो आया, जो देखने में आया रियल में, वो कहीं और था। तो आप जैसा बता रहे हैं कि आने वाले महीने में ये लगता है कि और नीचे जाने के आसार हैं, क्या ये सही वक्त है जबकि नए आरबीआई गवर्नर भी आ गए हैं कि ब्याज दरों की कटौती पर निर्णय जो है वो आरबीआई ले जल्दी से?
रिजर्व बैंक गवर्नर की जो आप बात कर रहे हैं वो एक अब कमेटी के फ्रेमवर्क में आ चुका है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका एक दिन तय हुआ था। जैसे कि अमेरिका में भी फेडरल रिजर्व की जो कमेटी होती है वो एक टाइमली बढ़ती है, अनलेस ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए कि नहीं कल ही आपको इंटरेस्ट रेट दरें घटानी है या बढ़ानी है। मैं समझता हूं कि अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन ना आए तो नॉर्मल कोर्स में जब फरवरी में जो उसकी मीटिंग होगी, अगली मौद्रिक नीति की समीक्षा का दिन है जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में है, उसी टाइम मेरे ख्याल से ये इसका निर्णय लिया जाएगा। उस समय में और भी ऐसे कोई आंकड़े डेटा पॉइंट्स आ जाएंगी जिससे कि नए गवर्नर साहब जो हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा, उनकी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी भी है, उनको देखना पड़ेगा। मुझे ये नहीं लगता कि इसी वक्त ये जो सीपीआई खुदरा इन्फ्लेशन रेट से होकर आप इमीडिएटली कोई ऐसा कोई एक्शन ले जिससे कि इकोनॉमी की जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। अननेसेसरी अगर आप फट से एक डिसीजन ले लेते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई जरूरी है। जरूरी क्या है कि जो ये फूड इन्फ्लेशन, जहां पे फूड लेवल में डिफ्लेशन हो रहा है और ओवरऑल इन्फ्लेशन कम आ गई है, तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी और सरकार को भी ये जो फूड इन्फ्लेशन बजाय डिफ्लेशन होगी इसके बारे में चिंताजनक बात है ये, क्योंकि ये फार्मर्स डिस्ट्रेस जो हो रहा है, जिसके लिए आप देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में या तेलंगाना में या राजस्थान में छत्तीसगढ़ में कृषक का रोष जो है उसको कम करने के लिए मुझे लगता है कि फूड डिफ्लेशन जो है इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन रेट का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके सबसे बड़ी जो एक पॉलिसी लेवल टेकअवे है वो है किस तरह से कृषक का ये रोष जो है कि उनका दाम घट रहा है, दाम नहीं बढ़ रहा है, एमएसपी बढ़ाए न बढ़ाए, डेट वेवर करे ना करे, जब तक ये मौलिक मुद्दा जो है कि किस तरह से आप कृषि पदार्थ के दाम जो हैं वो घटने के बजाय जो कॉस्ट प्लस बेसिस में उनको जरूर दाम मिले, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूं कि रिटेल प्राइस के इंडेक्स से ये चीज बहुत उभर के आ रही
है। जी बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और इसको कहीं ना कहीं पर ना दो तरीके से इसको हैंडल करने की जरूरत है, इससे पार पाने की जरूरत है। एक तो ये कि आप ये निश्चित कर लीजिए कि वैसे कृषक जिनको कि आप जरूरी तौर पर इमीडिएट कुछ देना चाहते हैं उसमें डीबीटी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उस तरह की चीज कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कृषक को या जो किसान है उसको सही मूल्य मिले इस बात को इंश्योर करने की बात है। वो इतने सालों से कई सरकारें जो है कोशिश कर रही हैं कि वो रिफॉर्म्स किए जाएं, मार्केट रिफॉर्म्स जो है एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स वो किए जाएं, ये सारे कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के जिम्मे भी हैं, इसलिए भी जिस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए हो नहीं पाया है। शायद जिस तरह से जीएसटी के लेवल पर सरकार, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जीएसटी काउंसिल है, इस तरह की कोऑर्डिनेशन की कमेटी कुछ बने और जो रिफॉर्म्स जरूरी है जिससे कि इस तरह की चीजें डिफ्लेशन और किसान पर जो बोझ पड़ता है, सही मूल्य नहीं मिलता है, ये सब ठीक हो सके। ये तो बहुत जरूरी चीज है जो कि यहां से दिख रही है। लेकिन एक और मुद्दा जो अभी है कि आपकी जो विकास की दर है कंट्री की, वो उस मुकाम पे उस जगह पर आके खड़ी है जहां पर कि इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं कैपिटल की जरूरत है, वहां पर उसको पैसे की जरूरत है, जो एनपीए का इश्यू है या फिर बैंकों की जो हालत है उसको लेके ये फंड जो है वो कॉस्टली है, जो पैसे मिलने चाहिए वो कॉस्टली है और ठीक तरीके से मिल नहीं रहा। अब जबकि इन्फ्लेशन या महंगाई की दर जो है वो इस दिशा में है कि कहीं न कहीं आरबीआई को इस बात से संतोष होना चाहिए, अब हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि ब्याज दरें घटाएं आप, लेकिन वो डायरेक्शन, वो दिशा कैसी होनी चाहिए?
देखिए, दिशा में तो साफ है कि अगर कृषि की भी अगर बात करते हैं, कृषि में तीन चीजों की बहुत सख्त जरूरत है। एक तो है कि इन्वेस्टमेंट रेट जो कम होता जा रहा है हर साल में, वो उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। कृषि की जो प्रोडक्टिविटी गेन्स नहीं आ रही है उसके ऊपर ध्यान देना है, कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रयोग उसको बढ़ावा देना है, और चौथी बात कृषि के लिए जो तेलंगाना सरकार ने कैश ट्रांसफर की जो स्कीम है, जो इनकम सपोर्ट स्कीम है, उसका जो लागू किया है उन्होंने, उसका और भी एक साधारण तरह से जो कि सिर्फ लैंड ओनर ही नहीं पर लैंड टेनेंट को जो उससे पैसा मिले। ग्रोथ की बात में मैं समझता हूं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो आंकड़े जो आई हैं वो तो साफ ये दर्शा रही हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट रेट में वृद्धि देखते हैं, जो पिछले तीन तिमाहियों में आपने इन्वेस्टमेंट रेट की वृद्धि देखी है, उसी का और एक प्रतिफलन दिख रहा है कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में 16% की वृद्धि आई है।
महंगाई की दर जिस हालत में अभी पहुंच गई है, कहीं न कहीं सरकार के पास और आरबीआई के पास अम्यूनिशन की तरह है विकास में और किसानों की जो समस्याएं हैं उसको हल करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।
सामिकी में अभी आप सुन रहे थे खुदरा महंगाई में गिरावट पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य और पत्रकार संतोष तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.in।